भजन संहिता 83। भजन 83 में वो शत्रुओं द्वारा उन पर लाई गई विपत्ति के बारे में कहता है और परमेश्वर से छुटकारे की विनती करता है, जैसा परमेश्वर इतिहास में पहले कर चुका है। परमेश्वर कार्य कर, हे परमेश्वर अब हमारी सहायता कर। भजन 83 पद 1। हे परमेश्वर मौन न रह, हे ईश्वर चुप न रह और न शांत रह, परमेश्वर कुछ तो कर। भजन 83 पद 2 और 3। क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है, वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। आजकल एक समस्या ये है कि परमेश्वर खामोश है। मैं जब भ्रष्टाचार देखता हूं जो हॉलीवुड सिनेमा के माध्यम से आम जनता में आ रहा है, चतुर लोग परमेश्वर का कैसा रूप प्रदर्शित कर रहे हैं और परमेश्वर में विश्वास रखने वालों को मूर्ख सिद्ध कर रहे हैं। जो लोग धार्मिकता या नैतिकता पर विश्वास करते हैं उन्हें पूरा मूर्ख दर्शाते हैं। जानबूझकर एक मनुष्य को जो भलाई के लिए खड़ा होता है उसे वे बुरे प्रकाश में दिखाते हैं, बुरे मनुष्य की महिमा करते हैं और बुराई में फंसे लोगों को हीरो बनाते हैं। वे देश में जहर फैला रहे हैं। मैं कभी कभी भजनकार की तरह कहता हूं, प्रभु खामोश न रह, कुछ कर प्रभु, उन्हें रोक। परमेश्वर खामोश न रह, परमेश्वर कुछ कर। मैं नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस द्वारा लगाए जाने वाले उन विज्ञापनों को देखता हूं जो प्रचारकों के विरुद्ध है। मैं कहता हूं परमेश्वर दुष्ट मनुष्यों को रोक। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इस नास्तिक मानववादी नॉर्मन लियर को विज्ञापन बनाने के लिए किराए पर लेती है। मैं कहता हूं परमेश्वर उन्हें रोक। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस को इस काम से रोक कि वे ऐसा भयानक काम ना करें। मैं जानता हूं रविवार की रात हमारे रेडियो श्रोताओं का समूह विशाल होता है। सत्य तो ये है कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार रेडियो पर सुने जाने वाले कार्यक्रमों में हमारी रविवारीय आराधना इस क्षेत्र में सबसे अधिक सुना जाने वाला कार्यक्रम है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें रेडियो प्रसारण का ये मौका दिया कि रविवार की रात को जो लोग आराधना में नहीं आ पाते वे घर में रहकर बच्चों को सुलाते समय कार्यक्रम सुन सकते हैं। आप उन सब के बारे में सोचें जो हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग दूसरे चर्चों से हैं। बहुत से लोग ऐसे चर्च से होते हैं जो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च से संबंधित होते हैं। मैं निजी तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस से कोई भी संबंध नहीं चाहता और मैं एक पैसा भी उन चर्चों को देना नहीं चाहता जो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च को सहयोग देते हैं या वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस को। ये मैं साफ कह देता हूं कि जो स्थानीय कलीसियाएं नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस से सहयोग रखती है वे उनकी सहायता ना करें और अपने संबंधों पर पुनर्विचार करें। मैं समझता हूं कि नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च ने मसीहत के विरुद्ध इतना काम किया है जितना शायद संसार में किसी और ने नहीं किया। वे सत्य सुसमाचार प्रचारक कलीसिया के प्रतिनिधि नहीं है, अर्थात सच्चे सेवक नहीं है। वे मानववाद के विचारों को धर्म के नाम से प्रदर्शित करते हैं और वे बुराई को बढ़ावा देते हैं। हे परमेश्वर शांत न रह, अपनी शांति को मत रोक, ठहरा न रह, परमेश्वर कुछ कर। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। विरोधी युक्ति खोजने वालों को उन्होंने आधार लिया है। भजन 83:4। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए। उन्होंने वास्तव में इसराइल के विरुद्ध मोर्चा बांधा है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस प्रतिवर्ष पीएलओ को 20 लाख रुपया देता है? पीएलओ की बहुत से आतंकवादी गतिविधियों को वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। वे उन चर्चों से जो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस से संबंधित है ये धन उगाते हैं। यदि आप उनसे संबंधित है तो आप उन आतंकवादियों का सहयोग देते हैं जो अमेरिका में हैं। इसका एक उदाहरण है एंजेलो डेविस सुरक्षा कोष, जिसके द्वारा अमेरिका आतंकवादियों को सहयोग देता है। आप इस प्रकार वास्तव में उन्हें सहयोग देते हैं जो मिशनरी और उनके बच्चों को घात करते हैं। आप पीएलओ को सहयोग देते हैं। आप इसराइल के दुश्मनों को सहयोग देते हैं। मैं इनको सहयोग देना नहीं चाहता हूं। वे सब एक हो गए कि इसराइल को मिटा दें। भजन 83:4-6 और इसराइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले, ये सब राष्ट्र इसराइल के विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं। भजन 83:6-8 और इश्माइली, मोआबी और हुग्री, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत पिलिस्ती है। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लोत वंशियों को सहारा मिला है। इन लोगों के लिए वो कहता है, परमेश्वर इन्हें नाश कर। भजन 83:9 इनसे ऐसा कर जैसे मिद्यानियों से। न्यायियों की पुस्तक में इसका वृत्तांत है कि मिद्यानी इसराइल के विरुद्ध आए थे और गिदोन ने उन्हें हराया था। भजन 83:9 में आगे लिखा है, और कीशोन नाले में सिसरा और याबिन से किया था जो एंदोर में नाश हुए। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने सिसरा और याबिन की मृत्यु के लिए खूंटा ठहराया था कि उनके सिर में गाड़ दिया जाए। भजन 83:11 इनके रईसों को ओरेब और जाइब सरीके। ओरेब और जाइब का उल्लेख न्यायियों की पुस्तक 7 या 8 अध्याय में भी है। भजन 83:11 में आगे लिखा है, और उनके सब प्रधानों को जेबा और सलमुना के समान कर दे। ये मिद्यानियों के प्रधान थे जो गिदोन के समय इसराइल के विरुद्ध में आए थे, कुछ गिदोन के द्वारा और बाकी एप्रेमियों के द्वारा जो गिदोन की सहायता के लिए आए थे नाश किए गए थे। भजन 83:12-18 जिन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएं। हे मेरे परमेश्वर, इनको बावंडर की धूली, वो पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, उस भाग की नाई जो वन को भस्म करती है और उस लौ की नाई जो पहाड़ों को जला देती है। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने भावंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढे, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे। इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिसे ये जाने कि केवल तू, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। परमेश्वर ये सब कर जिससे मनुष्य जाने कि सब चीजों के ऊपर परम प्रधान तू ही है। यही उसकी पुकार थी। हे परमेश्वर, लगता है ये लोग तेरे विरुद्ध और तेरी योजना के विरुद्ध में खटे हुए हैं। अब परमेश्वर उन्हें शांत कर, उन्हें रोक, ताकि लोग तेरा सम्मान करना सीखे। प्रभु